ओम शांति।
ओम शांति।
प्रातः क्लास की वाणी चल रही थी 21 अक्टूबर 1968।
द वाणी ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 21 अक्टूबर 1968 वॉज इन प्रोग्रेस।
चौथे पेज के आदि में बात चल रही थी।
द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ पेज वॉज
कि कई बच्चे ऐसे समझते हैं,
मेनी चिल्ड्रन थिंक,
तुम स्वर्ग में जावेंगे तो हम तुम्हारा पूंछ पकड़ लेंगे।
When you go to heaven, we will catch hold of your tail to reach heaven.
परंतु ऐसी बात तो है नहीं।
But it is not so.
ज्ञान में चलने वाले अक्सर करके ऐसे पति होते हैं जो पत्नी को ज्ञान में चलने से इनकार कर देते।
Generally, the husbands of the mothers who follow the knowledge are such that they refuse their wife's advice to follow the path of knowledge.
कहते हैं जब तुम स्वर्ग में जाओगी तो हम तुम्हारा पूछ पकड़ के चले जाएंगे।
They say, when you go to heaven, I will catch hold of your tail and reach there.
बाबा कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं।
Baba says, there is no such thing as catching the tail.
ये तो पुरुषार्थ की बात है।
It is about making purushartha, that is spiritual effort.
हाँ।
But yes.
देह अभिमान की पूछ जरूर है।
There is certainly the tail of body consciousness.
तो जो देह अभिमान की पूछ पर फिदा होते हैं उनको कुछ न कुछ संग का रंग लग जाता है।
So, those who devote themselves to the tail of body consciousness are colored by the company to some extent or the other.
परंतु उनसे ऊंचा पद प्राप्त पाए में ये तो नहीं हो सकता।
बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू अचीव अ हायर पोस्ट देन देम।
अभी तुम बच्चों को कितना अकलमंद बनाते हैं।
नाउ ही मेक्स यू चिल्ड्रन सो वाइज।
बच्चों को बैठ समझाते हैं, जब तक ये रथ है बाबा प्रवेश करते हैं।
ही सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन एज लॉन्ग एज दिस चैरियट एग्जिस्ट्स बाबा एंटर्स हिम।
अभी क्या उदाहरण दिया।
वॉट एग्जाम्पल डिड ही गिव जस्ट नाउ।
अभी क्या बात पलट दी।
वॉट टॉपिक डिड ही स्विच ओवर टू नाउ।
गाय का उदाहरण दिया।
ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ अ काउ।
कलकत्ते में गंगा सागर मेले में जाते हैं।
वेन पीपल गो टू द गंगा सागर फेयर इन कलकत्ता
तो पंडे पुजारी ये ढोंग रचवाते हैं।
The guides and priests perform this drama.
गाय का पूछ पकड़ करके कहेंगे हरि बोल हरि बोल।
They will hold the tail of a cow and say हरि बोल हरि बोल, that is say हरि, name of Vishnu in the path of bhakti.
पार करेगा।
He will put you across.
अब ऐसे थोड़े ही है।
Well, it is not so.
कि वो जानवर गऊ की पूछ पकड़ करके कोई पार होने की बात है।
That it is about going across by catching the tail of a cow, the animal.
ये तो स्थूल सागर तो नहीं है।
It is not a physical ocean.
विषय सागर है।
It is the ocean of vices.
विषय सागर से क्रॉस होने के लिए
In order to cross the ocean of vices,
जो दुर्योधन दुशासन रूपी प्रवृत्ति के पुरुष हैं, उनको कन्याओं माताओं का आधार लेना पड़ता है।
The men with the nature of Duryodhan and Dushasan, that is, villainous characters in the epic Mahabharat, have to take the support of virgins and mothers.
ऐसी कन्याएं माताएं जो पवित्रता में दक्ष हों।
The virgins and mothers who are skilled in purity.
वो purity के आकर्षण के आधार पर।
On the basis of the attraction of that purity.
देह अभिमान की पूछ पकड़ने वाले भी क्रास हो जाते हैं।
Even those who catch hold of the tail of body consciousness go across.
इसलिए भगवान को जो खास रूप दिया गया है आकर्षित रूप वो कृष्ण का दिया गया है और कृष्ण के मस्तक में काहे की पूछ दिखाई जाती है।
This is why the special form, the attractive form given to God is of Krishna, and whose tail is shown on the forehead of Krishna?
मोर की पूंछ दिखाई जाती है.
द टेल ऑफ अ पीकॉक इज शोन.
पूंछों में वो मयूर पीछे बहुत आकर्षक होता है.
अमंग ऑल द टेल्स द टेल ऑफ अ पीकॉक मयूर पिच इज वेरी अट्रैक्टिव.
ऐसा नहीं है कि कृष्ण के पुरुषार्थी जीवन में देह अभिमानी की पूछ होती नहीं है.
इट इज नॉट दैट देर इज नो टेल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस इन द पुरुषार्थी लाइफ दैट इज लाइफ ऑफ मेकिंग स्पिरिचुअल एफर्ट ऑफ कृष्णा.
देह अभिमानी की पूछ तो होती है.
देर इज सर्टनली द टेल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस.
लेकिन उसमें प्योरिटी का इतना आकर्षण होता है.
बट देर इज सो मच अट्रैक्शन ऑफ प्योरिटी इन हिम.
जो आकर्षण और कोई भी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकता.
दैट देर कैनॉट बी एज मच अट्रैक्शन इन एनी अदर ह्यूमन सोल.
तो बाप बैठे बच्चों को ये बात सुनाते हैं कि ये रथ है.
सो द फादर सिट्स एंड टेल्स द चिल्ड्रन दिस इज अ चैरियट.
रथ माने
वॉट इज मेंट बाय चैरियट.
रथ माने देह.
वॉट इज मेंट बाय अ चैरियट द बॉडी.
देह है तो देह अभिमानी की पूछ भी होगी या नहीं होगी.
वेन देर इज अ बॉडी विल देर ऑल्सो बी द टेल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस और नॉट.
देह है.
वेन देर इज अ बॉडी
देह में बुद्धि धरी है.
वेन द इंटेलेक्ट इज इंगेज इन द बॉडी
तो देहधारी है. और देहधारी है तो कुछ न कुछ परसेंटेज में ज्यादा नहीं.
ही इज अ बॉडीली बींग एंड वेन ही इज अ बॉडीली बींग देर इज टू सम एक्सटेंट इन सम परसेंटेज नॉट मच.
तो थोड़ी में थोड़ी देह अभिमानी की पूछ जरूर है.
सो सर्टनली देर इज द टेल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस टू सम एक्सटेंट.
या तो देह को मन बुद्धि बिल्कुल त्याग दे.
Or else the mind and intellect should completely renounce the awareness of the body.
ये देह जैसे कि जड़वत हो जाए.
This body should become as if it is non-living.
और आत्मा ये अनुभव करे कि देह अलग है और आत्मा अलग है.
And the soul should experience that the body is separate and the soul is separate.
सूक्ष्म शरीर से जैसे कि डिटैच हो जाते हैं.
It is just like we become detached from the subtle body.
जैसे कि स्वप्न में शरीर से डिटैच हो जाते हैं.
Just as we become detached from the body in our dreams.
तो मुख्य बात ये है कि रथ जब तक है.
So the main thing is that as long as the chariot exists,
तब तक उस देह के संग के रंग के आधार पर
ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ दैट बॉडी
बच्चे इम्तिहान में सहज सहज पास हो सकते हैं.
द चिल्ड्रन कैन पास इजीली इन द एग्जामिनेशन.
फिर तो ये चले जावेंगे.
देन दिस वन विल डिपार्ट.
कौन
हु
रथ भी चले जावेगा और बाप भी चला जावेगा.
द चैरियट एज वेल एज द फादर विल डिपार्ट.
माने मैं भी जाऊंगा यह भी जावेंगे.
मीनिंग आई विल डिपार्ट एज वेल एज दिस वन विल डिपार्ट.
शास्त्रों में भी है.
इट दैट इज ट्रूथ इज इन द स्क्रिप्चर्स एज वेल.
आटे में लून मिसल है.
इट इज लाइक द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन फ्लोर.
जैसे आटे में थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला जाता है.
Just as a little, a small quantity of salt is added to flour.
तो ऐसे ही शास्त्रों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है.
So similarly, there is a little bit of truth in the scriptures.
बाकी तो सभी झूठ है.
All the rest is just false.
जैसे गीता भी है.
For example, there is the Gita as well.
वो भी तो शास्त्र है.
It is also a scripture.
और सर्वशास्त्र शिरोमणि शास्त्र है.
Moreover, it is the gem among all the scriptures.
परंतु उसमें भी झूठ डाल दिया है.
But they have put false topics even in that.
क्या?
What?
क्या झूठ डाल दिया है?
Which lie have they put in it?
कि गीता का भगवान कृष्ण है.
The lie that Krishna is the god of the Gita.
वास्तव में
Actually,
गीता का भगवान कृष्ण नहीं है.
Krishna is not the god of the Gita.
वो तो दिखाया है कि भगवान तो रथ हांकते हैं।
It has been shown that God drives the chariot.
और शास्त्र में ये भी दिखाया है।
And it has also been shown that is mentioned in the scriptures.
कि रथ शरीर को कहा जाता है, शरीरम रथम विद्धि, इंद्रियाणि हयानि आहु।
That the body is called a chariot. शरीरम रथम विद्धि, इंद्रियाणि हयानि आहु।
शरीर को रथ समझ।
Consider the body as a chariot.
इंद्रियों को घोड़ा समझ।
And the organs as the horses.
इतना होने के बावजूद भी।
Despite all this.
मनुष्यों ने कृष्ण को भगवान समझ लिया है।
Human beings have considered Krishna as God.
अब भगवान क्या स्थूल घोड़ा गाड़ी हाकेगा?
Well, will God drive a physical horse carriage?
ये तो शरीर रूपी रथ है।
It is indeed a chariot-like body.
इस शरीर रूपी रथ को संचालन करते हैं।
He controls the chariot-like body.
कैसे चलाना है?
How should we run it?
कैसे कार्य व्यवहार करना है?
How should we act?
ये बात बाप आकर के प्रैक्टिकल में सिखाते हैं।
The father comes and teaches this in practice.
सिर्फ बोल बोल ही नहीं करते।
He does not just speak.
प्रैक्टिकल में आचरण करके दिखाते हैं।
He also sets an example by performing actions in practice.
तो रथ के द्वारा कर्म किया जाता है ना?
So actions are performed through the chariot, aren't they?
इस शरीर रूपी रथ है।
This is a chariot-like body.
ये बात कोई भी नहीं जानते हैं।
Nobody knows this fact.
कि एक ही रथ में, एक ही शरीर रूपी रथ में दो आत्माएं कैसे निवास करती हैं?
How two souls reside in the same chariot-like body?
परमपिता की आत्मा भी और परम पार्ट बजाने वाले परमात्मा की आत्मा भी।
The soul of the supreme father as well as the soul of the supreme soul who plays the supreme part.
दोनों ही एक रथ में पार्ट बजाती हैं।
Both play part in the same chariot.
आगे आगे होकर कौन पार्ट बजाता है?
Who plays the part being in front?
दो आत्माएं एक शरीर रूपी रथ में हैं।
Two souls are in one chariot-like body.
तो आगे आगे कौन पार्ट बजाता है और पीछे पीछे फॉलो कौन करता है?
So who plays the part being in front and who follows behind?
अरे कोई आगे पीछे होगा, दोनों साथ ही साथ दौड़ते हैं।
अरे will they be one behind the other or do both of them run together?
दो आत्माएं हैं ना?
There are two souls, aren't there?
तो दो आत्माएं जो कर्म करने वाली हैं एक ही शरीर रूपी रथ के द्वारा।
So the two souls which perform actions through the same chariot-like body.
उन दोनों आत्माओं के बीच में मुखिया कौन है?
Who is the chief between both the souls?
Shiv
Bab.
Someone said the father Shiv. The father Shiv.
वो आगे है।
He is in the front.
और फॉलो करने वाला?
And the one who follows?
Prajapita.
Someone said behind. Prajapita.
वो पीछे।
He is behind.
तो इस बात को कोई जानते नहीं है कि परमपिता परमात्मा तीनों धर्म की स्थापना करते हैं।
So nobody knows this fact that the supreme father supreme soul establishes all the three religions.
कौन कौन तीन धर्म?
Which three religions?
Brahma dharma.
The Brahmin religion.
Brahma se Brahma dharma.
The Brahmin religion through Brahma.
एक शरीर में काम करने वाली आत्माएं कितनी?
How many souls work in one body?
तीन आत्माएं हैं।
There are three souls.
तीन आत्माएं हैं।
When there are three souls,
तो तीनों आत्माओं में
among the three souls,
दो को तो दिखा दिया।
Two have been shown anyway.
एक भगवान के रूप में रथ हांकने वाला।
One is in the form of God who drives the chariot.
और दूसरा?
And the other?
रथ का मालिक अर्जुन के रूप में।
Is the owner of the chariot in the form of Arjun.
जो पुरुषार्थ का अर्जन करता है।
The one who accumulates fruit through spiritual effort.
पुरुषार्थ की कमाई करता है.
Who earns through पुरुषार्थ.
तीसरी कौन.
Who is the third one.
है तीसरी दिखाते हैं कि अर्जुन के रथ में जो ध्वज था.
The third one is shown in the flag on the chariot of Arjun.
उस ध्वज में हनुमान का चित्र दिखाते हैं.
The picture of Hanuman is shown in it.
ये हनुमान के रूप में हवा में उड़ने वाला कोई और नहीं है. ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है.
It is not someone else who flies in the air in the form of Hanuman, a monkey-faced deity. It is the subtle-bodied soul
जो उनके ध्वज में दिखाई गई है.
Which has been shown on his flag.
तो बाप तीन धर्म की स्थापना कराते हैं.
So the father enables the establishment of three religions
तीनों रथों द्वारा.
Through all the three chariots.
रथ तो तीन नहीं है, रथ तो एक ही है.
In fact, there aren't three chariots. There is indeed only one chariot.
लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्मा उस रथ को अलग अलग तरीके से यूज करती है.
But the souls which play the part through it use that chariot in different ways.
उसमें सुप्रीम सोल परम पिता के द्वारा देवता धर्म की स्थापना होती है.
In that, the deity religion is established through the supreme soul, the supreme father.
राम वाली आत्मा के द्वारा क्षत्रिय धर्म की स्थापना होती है.
The Kshatriya, that is warrior religion, is established through the soul of Ram.
और ब्रह्मा वाली आत्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है.
And the Brahmin religion is established through the soul of Brahma.
तो बाप आकर तीन धर्म स्थापन करते हैं.
So the father comes and establishes three religions.
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों के मुख से मुखवंशावली संतान पैदा हुई.
The mouth-born progeny Brahmins were born through the mouth of Brahma.
और जो मुखवंशावली संतान पैदा हुई उनमें कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं.
And among the mouth-born progeny who were born, some fail and some pass.
जो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रियों की लिस्ट में चले जाते.
Those who fail go in the list of the Kshatriyas, that is, members of the warrior class.
और जो पास हो जाते हैं वो देवताओं की लिस्ट में चले जाते.
And those who pass go in the list of the deities.
अब श्री कृष्ण को तो छोटा बच्चा के रूप में पूजा दिखाते.
Well, Shri Krishna is worshipped in the form of a small child.
बड़े के रूप में तो नहीं पूजते हैं.
He is not worshipped in the form of a grown-up.
अब छोटा बच्चा कैसे संचालन करेगा.
Well, how will a small child control a chariot?
रथ कैसे हांकेगा.
How will he drive a chariot?
छोटा बच्चा तो महात्मा जैसा होता है.
A small child is like a great soul, that is Mahatma.
छोटे बच्चे की अकल तो सगीर नहीं होती है.
A small child's intellect is certainly not mature.
वो कैसे बाप बनेगा.
How will he become the father?
बाप तो ऊपर से आते हैं.
In fact, the father comes from above.
कहाँ से आते हैं.
From where does he come?
परमधाम से आते हैं.
He comes from the supreme abode.
और वो कृष्ण बच्चा तो.
And that child Krishna.
इसी शक्ति पर नीचे की शक्ति में जन्म लेते लेते नीचे उतरते आता है.
Keeps experiencing downfall while being born again and again in this very world situated below.
तो जो बाप ऊपर से आते हैं वो बाप सभी का बाप है.
So the father who comes from above is everybody's father.
कृष्ण वाली आत्मा का भी बाप है और 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं.
He is the father of the soul of Krishna as well as the 500-700 crore, that is 5-7 billion human beings.
और उन मनुष्य मात्र का जो भी पिता है, प्रजापिता एडम आदम, उसका भी बाप है.
And he is also the father of all those human beings, that is प्रजापिता.
एडम और आदम.
तो अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति समझते हो.
सो नाउ यू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेल.
और इन बातों को अच्छी रीति समझना भी है.
एंड यू डू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेल.
क्योंकि 63 जन्म तो गुरुओं की बातें सुनते आए.
बिकॉज यू लिसन टू द वर्ड्स ऑफ गुरुज फॉर 63 बर्थ्स.
समझ में तो पक्का बैठा नहीं.
यू डिड नॉट अंडरस्टैंड फर्मली.
अभी तो हर बात बुद्धि में बैठती है ना.
नाउ एवरीथिंग सिट्स इन द इंटेलेक्ट डजंट इट.
कि आत्मा ही सभी कुछ करती है.
दैट इट इज द सोल दैट डज एवरीथिंग.
आत्मा रूपी जो झाड़ के पत्ते हैं वो हिलते हैं.
द लीव्स ऑफ द ट्री इन द फॉर्म ऑफ सोल्स शेक.
कार्य व्यवहार में हिलते जुलते रहते हैं.
दे कीप शेकिंग इन प्रैक्टिकल एक्शंस.
लेकिन एक का कार्य व्यवहार नहीं मिल सकता दूसरे से.
बट द एक्शंस ऑफ वन सोल कैनॉट मैच विद दैट ऑफ द अदर.
एक पत्ता पेड़ का दूसरे पत्ते से कभी मिलता है.
डज वन लीफ ऑफ अ ट्री मैच विद अनदर.
मिलता है.
डज इट मैच.
नसें नाड़ियाँ आकार प्रकार लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती है क्या. नहीं.
आर द नर्व्स वेन्स शेप टाइप लेंथ एंड ब्रेथ अलाइक. नो.
ऐसे ये 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है.
सिमिलरली दीज आर 5-7 बिलियन ह्यूमन सोल्स.
इनकी शक्ल सूरत कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती है.
दे आर फेस एंड फीचर्स कैन नेवर मैच विथ ईच अदर.
परंतु कर्म करने वाली आत्मा ही है.
बट इट इज द सोल अलोन विच परफॉर्म्स एक्शंस.
और इन ऑर्गन्स द्वारा कर्म करती है.
एंड इट परफॉर्म्स एक्शंस थ्रू दीज ऑर्गन्स.
तो आत्माभिमानी बनना चाहिए.
सो वी शुड बिकम सोल कॉन्शियस.
ऑर्गन्स तो बदलते रहते हैं.
द ऑर्गन्स कीप चेंजिंग.
ये शरीर तो जन्म बाई जन्म बदलता रहेगा.
दिस बॉडी विल इंडीड कीप चेंजिंग बर्थ आफ्टर बर्थ.
तो जो बदलता रहने वाली चीज है स्थायी नहीं है उसको याद करना है.
सो शुड वी रिमेम्बर द थिंग विच कीप्स चेंजिंग विच इज इनकॉन्स्टेंट.
कि जो आत्मा स्थायी है उसको याद करना है.
और शुड वी रिमेम्बर द सोल विच इज परमानेंट.
आत्मा स्थायी है उसको याद करना है.
द सोल इज परमानेंट वी शुड रिमेम्बर इट.
बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं.
द फादर कम्स एंड मेक्स अस सोल कॉन्शियस.
मनुष्य मनुष्य को देह अभिमानी बनाता है.
अ ह्यूमन बीइंग मेक्स अनदर ह्यूमन बीइंग बॉडी कॉन्शियस.
और बाप.
एंड व्हाट अबाउट द फादर.
आत्माभिमानी बनाते हैं.
ही मेक्स अस सोल कॉन्शियस.
सिवाय बाप के और कोई भी मनुष्य आत्मा आत्माभिमानी नहीं बना सकती.
एक्सेप्ट फॉर द फादर नो ह्यूमन सोल कैन मेक अस सोल कॉन्शियस.
कृष्ण के लिए कह देते हैं भगवान.
दे सिंपली से फॉर कृष्णा दैट ही इज गॉड.
राम के लिए कह देते हैं भगवान.
दे सिंपली से फॉर राम दैट ही इज गॉड.
परंतु वो तो सदैव भूत भविष्य वर्तमान सदाकाल के लिए आत्म की स्थिति में रहते हैं क्या.
बट डू दे ऑलवेज रिमेन इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज दैट इज इन पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट.
हैं? नहीं रहते.
दे डू नॉट.
तो जो खुद ही आत्म की स्थिति में सदाकाल नहीं रहेंगे वो दूसरों को कैसे बना देंगे.
सो हाउ विल दोज हु देमसेल्व्स डू नॉट रिमेन इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज फॉर एवर मेक अदर्स सोल कॉन्शियस.
आत्म की स्थिति में वही बना ला सकता है जो स्वयं सदैव सदाकाल के लिए सदा शिव की स्टेज वाला हो.
ही अलोन कैन ब्रिंग अदर्स इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज हु हिमसेल्फ ऑलवेज रिमेन्स इन अ स्टेज ऑफ सदा शिव दैट इज फॉर एवर बिनेवलेंट.
इसलिए उनको कहते हैं सदा शिव.
दिस इज वाई ही इज कॉल्ड सदा शिव.
शिव अर्थात बिंदी.
शिव मीन्स अ पॉइंट.
उनकी बिंदी का ही नाम शिव है.
द नेम ऑफ हिज पॉइंट इट सेल्फ इज शिव.
उनकी आत्मा का ही नाम शिव है.
द नेम ऑफ हिज सोल इट सेल्फ इज शिव.
और मनुष्यों के शरीर का नाम होता है.
अदर ह्यूमन बीइंग्स हैव नेम्स बेस्ड ऑन देयर बॉडी.
क्यों.
Why?
उनको आत्मा नहीं होती मनुष्यों को.
Don't they, the human beings, have a soul?
आत्मा होती फिर शरीर का नाम क्यों?
They do have a soul. Then why do they have names based on their body?
क्यों सदैव देह अभिमान में रहते हैं?
Because they always remain body conscious.
देह अभिमान में रहते हैं तो देह का कार्य करते हैं देह अभिमानी बन करके.
When they remain body conscious, they work for the body in body consciousness.
आत्म की स्थिति में रह के कार्य करते हैं क्या?
Do they work in a soul conscious stage?
नहीं करते.
They do not.
इसलिए देह के ऊपर नाम पड़ते.
This is why their names are based on the body.
अच्छा, मनुष्य तो देह अभिमानी होकर के काम करते हैं.
अच्छा, human beings perform tasks in body consciousness.
और देवताएं?
And what about deities?
आत्मा अभिमानी होते हैं.
They are soul conscious.
तो जो आत्मा अभिमानी मनुष्य हैं, जिन्हें देवता कहा जाता है.
So the soul conscious human beings who are called deities.
कहा जाता है ना?
They are called so, aren't they?
उनका देह के ऊपर नाम पड़ता है कि आत्मा का नाम पड़ता है?
Are their names based on the body or on the soul?
हाँ? Then?
Someone said on the body. Then?
जब आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं तो आत्मा के ऊपर नाम पड़ना चाहिए.
When they remain soul conscious, their name should be based on the soul.
देह के ऊपर नाम क्यों पड़ता है?
Why is their name based on the body?
हाँ?
Someone said they take the support of the body.
देह का आधार वो भी लेते हैं, देह का आधार मनुष्य भी लेते हैं.
They, that is the deities as well as the human beings, take the support of the body.
कर्म के अनुसार.
Someone said as per the actions. As per the actions.
कर्म देवताओं का तो कर्म बनता ही बिगड़ता नहीं है.
The actions performed by deities are elevated actions. They are not bad actions.
देवताएं तो जो कर्म करते हैं.
As regards the actions performed by the deities.
वो विपरीत कर्म तो करते नहीं श्रीमत के खिलाफ.
They do not perform any opposing action against the श्रीमत.
वो देह अभिमान का कर्म तो नहीं करते हैं.
They do not perform actions out of body consciousness.
हाँ सत्युग त्रेता में देवता होते हैं देह अभिमान का काम करते हैं क्या?
Someone said the deities are in the golden age. Yes, there are deities in the golden and the silver ages. Do they perform actions in body consciousness? Someone said no.
देह अभिमान का काम तो करते नहीं फिर भी देह के ऊपर उनका नाम क्यों पड़ता है?
They do not perform actions in body consciousness. Yet, why is their name based on the body?
Someone said they always remain in a soul conscious stage.
अरे तो आत्मा का नाम होना चाहिए ना फिर?
अरे then their name should be based on the soul, shouldn't it?
जैसे शिव का नाम सदैव क्या है?
For example, what is always the name of Shiv?
शिव ही है.
It is only Shiv.
शंकर का नाम फिर भी देह के ऊपर है.
The name of Shankar is however based on the body.
भले सूक्ष्म स्टेज में रहता है.
Although he remains in the subtle stage.
तो भी शरीर के ऊपर नाम है.
Yet his name is based on the body.
उनकी आत्मा का नाम शंकर नहीं है. उनकी आत्मा का नाम शंकर पढ़ ही नहीं सकता.
The name of his soul is not Shankar. The name of his soul cannot be Shankar at all.
हाँ तब पढ़ता है जब वो बाप समान स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं.
Yes, he is named Shankar when he attains a stage equal to the father.
तब शिव शंकर भोलेनाथ एक कहा जाता है.
Then it is said that Shiv Shankar Bholenath, that is the Lord of the innocent ones, are one.
तो सवाल ये है कि देवताओं का नाम देह के ऊपर क्यों पड़ता है?
So the question is, why is the name of deities based on their body?
वो आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं उनका नाम तो काय के ऊपर पड़ना चाहिए?
They remain soul conscious. Then on what should their name be based?
आत्मा के ऊपर पड़ना चाहिए.
Someone said it should be based on the body. No, it should be based on the soul.
आत्माभिमानी होकर रहते हैं ना.
समवन सेड समथिंग, दे रिमेन सोल कॉन्शियस, डोंट दे?
एक श्री ऐसा रहते हैं ना.
समवन सेड ओनली वन शिव रिमेन्स लाइक दिस, डजंट ही?
देवताएं आत्माभिमानी होकर रहते हैं नहीं?
डू डीटीज रिमेन सोल कॉन्शियस और नॉट?
और शिव भी आत्माभिमानी होकर रहता है सदाई?
समवन सेड दे डू एंड शिव ऑल्सो रिमेन सोल कॉन्शियस फॉर एवर.
कल्याणकारी?
समवन सेड दे आर नॉट बिनेवलेंट. बिनेवलेंट? समवन सेड दे, दैट इज द डीटीज, कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ.
देवता, हाँ, देवताएं जो है वो नीचे गिरते हैं.
यस, द डीटीज एक्सपीरियंस डाउनफॉल.
भले देह अभिमानी नहीं है, आत्मा अभिमानी है.
ऑल्दो दे आर नॉट बॉडी कॉन्शियस, दे आर सोल कॉन्शियस.
फिर भी जन्म बाई जन्म कुछ न कुछ देह के आकर्षण में नीचे गिरते रहते हैं.
येट दे कीप फॉलिंग इन द अट्रैक्शन ऑफ द बॉडी टू सम एक्सटेंट बर्थ आफ्टर बर्थ.
मानो पहला जन्म है.
फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट बर्थ.
सतयुग में पहला जन्म होगा राधा कृष्ण का जन्म देह के बगैर, हो सकता है?
द फर्स्ट बर्थ विल टेक प्लेस इन द गोल्डन एज. कैन द बर्थ थ्रू राधा एंड कृष्णा टेक प्लेस विदाउट अ बॉडी?
देह के आकर्षण के बगैर उनका जन्म होगा बच्चों का?
विल द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस विदाउट द अट्रैक्शन ऑफ द बॉडी?
देह के आकर्षण के बगैर राधा कृष्ण के बच्चों का जन्म नहीं हो सकता.
द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ राधा एंड कृष्णा कैनॉट टेक प्लेस विदाउट द अट्रैक्शन ऑफ द बॉडी.
इससे साबित हो गया कि भला आत्माभिमानी होकर रहते हैं.
इट प्रूव्स दैट ऑल्दो दे रिमेन सोल कॉन्शियस,
फिर भी कुछ न कुछ नीचे गिरना होता ही रहता है जन्म बाई जन्म.
येट दे सर्टनली कीप फॉलिंग डाउन टू सम एक्सटेंट बर्थ आफ्टर बर्थ.
क्योंकि देह की श्रेष्ठ इंद्रियों से भी सुख भोगते हैं.
बिकॉज इफ हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस्ड इवन थ्रू द एलिवेटेड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी,
तो सुख भोगने से आत्मा की शक्ति कुछ न कुछ क्षीण होती है.
द पावर ऑफ द सोल डिक्रीजेस टू सम एक्सटेंट बाय एक्सपीरियंसिंग प्लेजर.
तो उनका देह के नाम, देह के ऊपर नाम पड़ता है.
सो देयर नेम इज बेस्ड ऑन द बॉडी.
उनका नाम भी आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है.
इवन देयर नेम इज नॉट बेस्ड ऑन द सोल.
शिवाय भाप के और कोई भी आत्माभिमानी नहीं बना सकता.
नोबडी एक्सेप्ट द फादर कैन मेक अ सोल कॉन्शियस.
कारण बताया?
वॉज एनी रीजन मेंशन्ड?
क्या कारण बताया?
वॉट वॉज द रीजन मेंशन्ड?
क्योंकि एक बाप ही है जो कभी भी देह अभिमानी नहीं, अंश मात्र भी देह अभिमानी नहीं बनता.
इट इज बिकॉज इट इज द फादर अलोन हु नेवर बिकम्स बॉडी कॉन्शियस. ही डजंट बिकम बॉडी कॉन्शियस इवन टू द स्लाइटेस्ट एक्सटेंट.
बाप, वो बाप बिंदी ही है या शरीर के द्वारा कर्म भी करके दिखाता है?
इज दैट फादर ओनली अ पॉइंट और डज ही परफॉर्म एक्शंस थ्रू द बॉडी एज वेल?
हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सदैव बिंदी ही बन करके रहता है.
समवन सेड ही परफॉर्म्स एक्शंस थ्रू द बॉडी एज वेल. यस, इट इज नॉट दैट ही रिमेन्स जस्ट अ पॉइंट फॉर एवर.
नहीं, बिंदी होते हुए भी, निराकारी स्टेज में होते हुए भी कर्म ऐसा करके दिखाता है कि राधा कृष्ण जैसे बच्चों को भी जन्म देता है.
नो,
डिस्पाइट बीइंग अ पॉइंट, डिस्पाइट बीइंग इन एन इनकॉर्पोरियल स्टेज, ही परफॉर्म्स सच एक्शंस दैट ही ऑल्सो गिव्स बर्थ टू चिल्ड्रन लाइक राधा एंड कृष्णा.
देता है या नहीं?
डज ही गिव बर्थ टू देम और नॉट?
है? अरे राधा कृष्ण जैसे बच्चों को अभी जन्म होता है.
समवन सेड ही डज. चिल्ड्रन लाइक राधा एंड कृष्णा आर ऑल्सो बोर्न.
ये कर्म करके दिखाता है, लेकिन उस कर्म में देह अभिमान का लेश मात्र भी नहीं होता.
ही परफॉर्म्स दिस एक्शन. but there is not even a trace of body consciousness in it.
आँखों का भी आकर्षण नहीं होता.
There is not even the attraction of eyes.
Vibration से ही.
Just by the vibrations.
अब vibration तो कोई पकड़ने की चीज है नहीं.
Well, vibrations are not something to be caught.
Vibration मात्र से ही राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म हो जाता है.
Children like Radha and Krishna are born just by the vibrations.
तो इसलिए उसका नाम बिंदी ही है.
This is why his name is only a point.
बिंदी का ही नाम है शिव.
The name of his point only is Shiv.
वो ही कल्याणकारी है.
He alone is benevolent.
और जो भी देह अभिमान में नीचे गिर करके कार्य करते हैं.
And all those who perform actions by falling in body consciousness.
एक को छोड़ करके.
Except for the one.
वो सब नीचे गिरने वाले और नीचे दूसरों को गिराने वाले.
All of them experience downfall and make others experience downfall.
आत्मा का ज्ञान पक्का पक्का ज्ञान एक के सिवाय और कोई में भी नहीं है.
The knowledge of the soul, the firm knowledge, is not in anyone else except for the one.
कोई कहे नहीं.
Someone may say no.
राधा कृष्ण की आत्मा में तो आत्मा का पक्का ज्ञान है, सोलह कला संपूर्ण.
There is the firm knowledge of the soul in the souls of Radha and Krishna. They are complete with 16 celestial degrees.
अगर सोलह कला संपूर्ण ज्ञान है तो वो भी ऐसी स्टेज धारण करके दिखाए.
If they have the knowledge complete with 16 celestial degrees, they should also prove themselves by assimilating such a stage.
कैसी?
What kind of a stage?
कि दृष्टि मात्र की भी जरूरत न रहे कर्म करने के लिए.
A stage in which not even the eyes are needed to perform actions.
क्या?
What?
संतान की उत्पत्ति करना ये सृष्टि में आने वालों का मुख्य कर्म है कि नहीं?
Giving birth to children is the main action of those who come in this world or not?
इस कर्म से कोई जुदा होकर रहता है?
Does anyone remain aloof from this action?
नहीं.
No.
ये मुख्य कर्म है.
This is the main action.
इसलिए आज लोगों में इतनी धारणा पक्की है.
This is why this dharana, that is belief, is firm among people.
खास भारतवासियों में.
Especially in the Indians.
कि जिसने जन्म लिया है उसे दूसरे को जन्म जरूर देना है.
That the one who is born should definitely give birth to another.
इसलिए शादी जरूर करना है.
This is why they should definitely get married.
अब उन्हें तो ये पता नहीं है.
Well, they do not know.
कि ये शादी करना, ये बच्चे पैदा करना, इसकी ऊंचे से ऊंची स्टेज कौन सी है?
What the highest stage of marriage and reproduction is?
जिस स्टेज में
the stage in which
100% सुख है, 100% शांति है.
There is 100% happiness, 100% peace.
इसलिए उसको कहते हैं ऊंचे से ऊंचे भगवान.
This is why he is called the highest on high God.
ऊंचे से ऊंचे देवता कहा जाता है या भगवान?
Is a deity called the highest on high or is God called the highest on high? Students, God.
भगवान कहा जाता है. ये थोड़े कहेंगे ऊंचे से ऊंचे शंकर देवता.
God is called the highest on high. It will not be said that the highest on high is Shankar, the deity.
वो ऊंचे से ऊंचे है.
Is he the highest on high?
अगर ऊंचे से ऊंचे होता.
Had he been the highest on high?
तो
then
नहीं.
Someone said he would have been God. No.
शंकर भगवान कहते हैं ना.
People say God Shankar, don't they?
अगर ऊंचे से ऊंचे होता तो कोई प्रूफ दो.
Had he been the highest on high? Then give some proof.
कि ऊंचे से ऊंचे हो ही नहीं सकता.
That he cannot be the highest on high at all.
अगर ऊंचे से ऊंचे होता तो उसके नाम के पहले शिव नहीं लगाया जाता.
Had he been the highest on high, the name of Shiv would not have been added before his name.
शंकर के नाम से पहले शिव लगाते हैं.
शिव इज एडेड बिफोर द नेम ऑफ शंकर.
नहीं तो शिव का नाम बाद में रखे.
अदरवाइज द नेम ऑफ शिव शुड बी प्लेस्ड आफ्टरवर्ड्स.
और शंकर का नाम पहले रखे, क्यों नहीं रखते?
एंड शंकर्स नेम शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट. व्हाई डोंट दे डू सो?
क्योंकि शिव ऊंचे से ऊंचे है और शंकर उससे उसे नीचे है.
इट इज बिकॉज शिव इज द हाईएस्ट ऑन हाई एंड शंकर इज लोअर देन हिम.
तो बताया.
सो इट वॉज सेड
कि आत्मा का ज्ञान,
दैट द नॉलेज ऑफ द सोल,
ऐसी स्टेज वाली आत्मा का ज्ञान और कोई के अंदर नहीं है.
द नॉलेज ऑफ अ सोल विथ सच अ स्टेज इज नॉट इन एनी वन एल्स.
कैसी ऊंची स्टेज वाली आत्मा का ज्ञान?
द नॉलेज ऑफ द सोल विथ वॉट काइंड ऑफ अ हाई स्टेज
है? 500 करोड़ में से ऊंचते ऊंच.
द हाइएस्ट सोल अमंग 5 बिलियन सोल्स.
ऐसी ऊंची स्टेज वाली आत्मा कौन है जिसका ज्ञान, पूरा ज्ञान, 100% ज्ञान किसी के अंदर नहीं है?
विच इज द सोल विथ सच अ हाई स्टेज दैट नो वन हैज इट्स नॉलेज, इट्स कम्प्लीट नॉलेज, इट्स 100% नॉलेज. समवन सेड नारायण.
नारायण के अंदर नहीं है?
इज इट दैट इज नॉलेज नॉट इन नारायण?
है? नारायण के अंदर नहीं है.
समवन सेड नो. इज इट दैट इज नॉलेज नॉट इन नारायण?
अगर नहीं होता तो बाबा ये क्यों कहते सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना.
Had it not been in Narayan, then why would Baba say the best purushartha is to remember Narayan?
निच को हम क्यों याद करें अगर नारायण ऊंची से ऊंच स्टेज वाला नहीं है?
Then why should we remember the lower one if Narayan is not the one with the highest stage?
इससे साबित होता है ज्ञान आत्मा का जितना गहरा हमारे अंदर स्वयं है.
It proves that the deeper the knowledge of the soul that we have in us,
हम जितना अपनी आत्मा को अच्छी तरह गहराई से जान सकते हैं उतना और कोई नहीं जान सकता.
The extent to which we can know our soul thoroughly and deeply, nobody else can know it, that is theirs, to this extent.
तो ऊंच से ऊंच देवता भी शंकर और ऊंच से ऊंच ज्ञान भी शंकर में है.
सो द हाइएस्ट ऑन हाई डीटी इज शंकर एज वेल एज द हाइएस्ट ऑन हाई नॉलेज इज इन शंकर.
सिर्फ अपना ही ज्ञान नहीं है.
ही डज नॉट हैव जस्ट द नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ.
जो देवताओं से भी ऊंचे है कौन?
द वन हु इज इवन ग्रेटर देन द डीटीज. हु?
भगवान शिव. उसका भी ज्ञान उसके अंदर है.
गॉड शिव इवन हिज नॉलेज इज इन हिम दैट इज शंकर.
ये प्रवृत्ति मार्ग है.
दिस इज द हाउस होल्ड पाथ.
शिव है निवृत्ति में.
शिव इज इन रिनंसिएशन.
और शंकर है प्रवृत्ति में.
एंड शंकर इज इन अ हाउस होल्ड.
देह के साथ प्रवृत्त है.
ही इज कनेक्टेड विद द बॉडी.
प्रवृत्ति से अलग उसे कोई कर ही नहीं सकता.
Nobody can separate him from the household at all.
कहते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है.
People say a soul is like a thumb.
है? क्या ऐसा है?
Is it so?
आत्मा अंगुष्ठे मिसल, शालिग्राम मिसल, इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी है.
Is a soul long and broad like a thumb, like a shaligram, round black pebbles worshipped in the path of bhakti? Someone said, no.
नहीं, फिर क्यों कहते हैं अंगुष्ठी मिसल?
Then why do they say that it is like a thumb?
है?
Someone said, it is very subtle.
अति सूक्ष्म तो बिंदी का है ना.
If it is very subtle, then they should call it a point, shouldn't they?
अंगुष्ठी मिसल क्यों कहते हैं?
Why do they say that it is like a thumb?
है? पूजा करने के लिए.
Someone said, to worship. To worship?
हाँ, पूजा और भक्ति जो है वो बड़े रूप की जाती है.
Yes, worship and devotion are performed for a big form. Someone said something.
हाँ, और याद करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बड़े रूप को ही याद करें.
यस एंड इट इज नॉट नेसेसरी फॉर रिमेम्बरेंस दैट वी रिमेम्बर ओनली अ बिग फॉर्म.
हम सूक्ष्मते सूक्ष्म बिंदु आत्मा को भी याद कर सकते हैं.
वी कैन रिमेम्बर द सटलेस्ट पॉइंट सोल एज वेल.
तो बताया.
सो इट वॉज सेड
अंगूठे मिसल कहते हैं
दैट पीपल जस्ट से दैट इट इज लाइक अ थंब.
कहते हैं
दे से
माने शास्त्रों की बात रिपीट करते हैं.
इट मीन्स डू दे रिपीट द टॉपिक्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स
या कोई परंपरा चली आई है जिसके आधार पर कहते हैं.
और डू दे स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ सम ट्रेडिशन दैट इज इन प्रैक्टिस.
शास्त्रों में ही तो लिखा हुआ है आत्मा अंगुष्ठाकार है.
इट हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स इटसेल्फ दैट अ सोल इज थंब शेप्ड.
अंगुष्ठाकार का मतलब ये है वो चाहे शिव की आत्मा हो.
थंब शेप्ड मीन्स वेदर इट इज द सोल ऑफ शिव.
चाहे प्रजापिता की आत्मा हो चाहे धर्म पिताओं की आत्मा हो चाहे उनके फॉलोअर्स की आत्मा हो.
वेदर इट इज द सोल ऑफ प्रजापिता वेदर इट इज द सोल ऑफ रिलीजियस फादर्स वेदर इट इज द सोल ऑफ देयर फॉलोअर्स.
कोई भी आत्मा होगी तो कोई न कोई आकार में प्रवेश करेगी.
विच एवर सोल इट विल एंटर इन वन शेप दैट इज बॉडी और अनदर.
बिंदु का तो कोई आकार ही नहीं होता.
अ पॉइंट डज नॉट हैव एनी शेप एट ऑल.
बिंदु की लंबाई चौड़ाई होती है.
डज अ पॉइंट हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ.
बिंदु की न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई न मोटाई.
देर इज नीदर लेंथ नॉर ब्रेड्थ नीदर हाइट नॉर विड्थ ऑफ अ पॉइंट.
जितना महीन पेंसिल बना देंगे
द शार्पर अ पेंसिल इज मेड
उतना महीन बिंदु रह जाएगा.
द पॉइंट मेड बाय इट will be minute to that extent.
उसको कौन नापेगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई क्या है.
Who will measure it to know what its length, breadth, height and width is?
तो वो ज्योति बिंदु कोई शरीर में जब तक प्रवेश न करे तब तक वो कर्म नहीं कर सकता.
So until that point of light enters a body it cannot perform actions.
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता.
It cannot be revealed.
प्रमाण नहीं बन सकता.
It cannot become a proof.
कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की दरकार ही नहीं.
It is said that something which is revealed meaning visible does not need a proof at all.
तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप आत्मा का है अंगुष्ठी मिसल. अंगुष्ठा क्यों.
दिस इज वाई द रिवील्ड फॉर्म ऑफ अ सोल इज लाइक अ थंब. वाई अ थंब.
अंगुष्ठा इसलिए.
इट इज लाइक अ थंब बिकॉज
कि आत्मा चाहे शिव की ही क्यों न हो.
मे द सोल बी ऑफ शिव हिमसेल्फ.
भगवान की ही आत्मा सुप्रीम सोल की आत्मा क्यों न हो.
मे इट बी द सोल ऑफ गॉड द सुप्रीम सोल हिमसेल्फ.
लेकिन उसको भी बड़े आकार में प्रवेश करना पड़े.
इवन इट हैज टू एंटर इन अ बिग शेप.
तो इसलिए शालिग्राम के रूप में दिखाते हैं या अंगुष्ठा मिसल दिखाते हैं.
हेंस दे शो इट दैट इज द सोल इन द फॉर्म ऑफ अ शालिग्राम और इन द शेप ऑफ अ थंब.
माना बड़ा रूप जो है वो लिंगाकार है.
इट मीन्स दैट द बिग फॉर्म हैज द शेप ऑफ अ लिंग.
और जो उसमें बिंदु है
एंड द पॉइंट इन इट
वो आत्मा की यादगार
इज अ मेमोरियल ऑफ द सोल.
भले सुप्रीम सोल है
दो इट इज द सुप्रीम सोल.
और दूसरी तरफ फिर कह देते हैं भ्रकुटि के बीच चमकता है जब सितारा.
एंड ऑन द अदर हैंड दे से दैट अ वंडरफुल स्टार शाइन्स इन द मिडल ऑफ द फोरहेड.
अरे ये तो दो बातें हो गई.
अरे दीज आर टू कॉन्ट्ररी टॉपिक्स.
आत्मा अगर अंगुष्ठा मिसल है
इफ द सोल इज लाइक अ थंब
तो भ्रकुटि के बीच में गुमड़ा होना चाहिए.
देर शुड बी अ बल्ज इन द मिडल ऑफ द फोरहेड.
यू इतना मोटा
अ बिग बल्ज लाइक दिस.
आत्मा तो सबके अंदर है फिर गुमड़ा तो किसी के अंदर नहीं.
देर इज अ सोल इन एवरी वन बट देर इज नो बल्ज ऑन द फोरहेड ऑफ एनी वन.
अंगुष्ठा मिसल कुछ गुमड़ा यहाँ दिखाई पड़ता है.
डू यू सी अ थंब लाइक बल्ज हियर दैट इज इन द मिडल ऑफ द फोरहेड.
नहीं दिखाई पड़ता.
इट इज नॉट सीन.
इससे साबित होता है.
दिस प्रूव्स
कि भक्त तो बेचारे
दैट द पुअर डिवोटीज
भावना में डूबे हुए होते हैं.
रिमेन इमर्स्ड इन फीलिंग्स.
गुरुओं की हर बात को सत्य वचन महाराज कहते रहते हैं बिना समझे.
दे कीप सेइंग सत्य वचन महाराज इट इज ट्रू टू एवरी वर्जन ऑफ द गुरुज विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम.
लेकिन सच्चाई ये है.
बट द ट्रूथ इज दैट
कि आत्मा बिंदु है ज्योति बिंदु वो प्रकृति के मध्य में रहती है.
द सोल इज अ पॉइंट ऑफ लाइट. इट लिव्स इन द मिडल ऑफ द फोरहेड दैट इज भ्रकुटि.
और जो भ्रकुटि और शरीर है ये आधार है.
एंड द भ्रकुटि एंड द बॉडी इज द बेस.
इसी को अंगुष्ठा मिसल बताया गया है जिसका आकार प्रकार होता है.
दिस इटसेल्फ हैज बीन सेड टू बी लाइक अ थंब विच हैज अ शेप.
तो अभी राइट क्या है तुम बच्चे समझ गए हो.
सो नाउ यू चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड व्हाट इज राइट.
क्या राइट है.
व्हाट इज राइट.
आत्मा बिंदु मिसल है या अंगूठे मिसल है या लिंग रूप है.
इज द सोल लाइक अ पॉइंट और लाइक अ थंब और इन द फॉर्म ऑफ अ लिंग.
आत्मा असल में ज्योति बिंदु रूप है.
द सोल इज इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट ऑफ लाइट इन रियलिटी.
तुम समझते हो.
यू अंडरस्टैंड
कि आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी है.
दैट अ सोल इज अ रियली वेरी स्मॉल पॉइंट.
उनको इन आँखों से कोई नहीं देख सकता. क्या.
नोबडी कैन सी इट थ्रू दीज आईज. व्हाट.
जो मलेरिया के कीटाणु होते हैं वो एक बूंद में कीटाणु यंत्र से देखे जाते हैं.
द माइक्रोब्स ऑफ मलेरिया कैन बी व्यूड इन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट.
डॉक्टर लोग देखते हैं.
डॉक्टर सी देम.
देखते हैं ना. नहीं नहीं.
दे सी देम डोंट दे. समवन सेड समथिंग. नो नो. समवन सेड माइक्रोस्कोप.
हाँ माइक्रोस्कोप से देखते हैं.
यस दे सी इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप.
तो वो छोटे छोटे कीटाणु एक बूंद में ढेर दिखाई पड़ते हैं उनको.
सो दे सी न्यूमरस स्मॉल माइक्रोब्स इन अ सिंगल ड्रॉप.
लेकिन आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई भी यंत्र से स्थूल यंत्र से दिखाई नहीं पड़ सकता.
बट द सोल इज सो माइन्यूट दैट इट कैनॉट बी सीन थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट.
फिर कैसे.
देन थ्रू व्हाट कैन इट बी सीन.
फिर कैसे अनुभव.
देन हाउ कैन वी एक्सपीरियंस इट.
है. हाँ ये मनबुद्धि रूपी आत्मा ही.
समवन सेड द इंटेलेक्ट. यस इट इज दिस सोल इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट इटसेल्फ.
स्वयं आत्मा ही आत्मा के स्वरूप को देख सकती है.
अ सोल इटसेल्फ कैन सी द फॉर्म ऑफ अ सोल.
जैसे भगवान के लिए कहते हैं भक्ति मार्ग जय जानो ते ही दे जनाई.
जस्ट लाइक दे से फॉर गॉड इन द पाथ ऑफ भक्ति जय ही जानो ते ही देव जनाई.
भगवान की जिस पर कृपा होती है वो ही भगवान को देख सकता है.
दैट इज ओनली द वन हु इज ग्रेस्ड बाय गॉड कैन सी हिम.
भगवान चाहे तो अपने स्वरूप का दर्शन कराए न चाहे तो न कराए.
गॉड मे शो हिज फॉर्म इफ ही विशेस टू और ही मे नॉट इफ ही डजंट विश टू.
इसी तरीके से आत्मा भी आत्मा के द्वारा ही देखी जा सकती है.
सिमिलरली अ सोल कैन ऑल्सो बी सीन ओनली बाय द सोल.
और कोई तरीका नहीं है.
देर इज नो अदर वे.
बाकी इन आंखों से स्थूल आंखों से कोई देखना चाहे.
एज फॉर द रेस्ट इफ समवन विशेस टू सी इट थ्रू दीज आईज द फिजिकल आईज.
देह की आंखों से.
थ्रू द आईज ऑफ द बॉडी.
तो कोई नहीं देख सकता.
देन नोबडी कैन सी इट.
समझा जाता है.
इट इज अंडरस्टूड
हमारे शरीर में आत्मा अविनाशी है.
द सोल इन अवर बॉडी इज इम्पेरिशेबल.
ये शरीर विनाशी है.
दिस बॉडी इज पेरिशेबल.
जो इन आंखों से ये शरीर दिखाई पड़ता है.
द बॉडी दैट इज विजिबल थ्रू दीज आईज.
ये सब है 2036 के बाद ये रहेंगे.
ऑल दीज बॉडीज विल दे रिमेन आफ्टर 2036.
नहीं रहेंगे.
दे विल नॉट.
2036 के बाद ये सब शरीर विनाश को हो जाएंगे.
all these bodies will perish after 2036.
और हमारी आत्मा फिर भी रहेगी कि नहीं रहेगी?
And will our soul exist even after that or not?
हमारी आत्मा फिर भी अविनाशी होकर रहेगी.
Our soul will still remain imperishable.
तो अपन को क्या समझना चाहिए?
So what should you consider yourself to be?
आत्मा समझना चाहिए. मरना कौन चाहता है?
You should consider yourself to be a soul. Who wants to die?
कोई इनमें ऐसा है जो अपने अस्तित्व को खत्म कर देना चाहता हो?
Is there anyone among these ones who wants to end his existence?
है? कोई नहीं. सब चाहते हैं कि हम ऐसे ही बने रहें जिंदा.
There is nobody like this. Everyone wishes that they remain alive as they are.
तो शरीर तो मरता जिंदा रहता है.
So the body indeed dies and remains alive.
लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है.
But the soul never dies.
तो जो अविनाशी है, अमर है.
So that which is imperishable, immortal,
है जिसको काल खाता नहीं है.
That which is not devoured by death,
काल से परे है.
Which is beyond death,
काल से अबाध है.
Which is unconstrained from death,
उस आत्मिक स्वरूप के चिंतन में सदैव रहना चाहिए.
We should always think of that soul conscious form.
पक्का पक्का समझें.
You should firmly understand
ये शरीर विनाशी है.
That this body is perishable.
विनाशी को याद करेंगे तो हम भी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे.
If we remember the perishable thing, we will perish too.
आत्मा का निवास असली निवास परम धाम में है.
The actual residence of a soul is in the supreme abode.
यहाँ ये बेहद का बड़ा मांडवा है.
Here, this is an unlimited big मांडवा.
मांडवा अर्थात रंगमंच.
मांडवा means a stage, that is रंगमंच.
ड्रामा खेलने का स्टेज है ये दुनिया.
This world is a stage to enact a drama.
जिसमें सभी आत्माएं पार्टधारी हैं.
In which all the souls are actors.
हम सब इस रंगमंच पर पार्ट बजाए रहे हैं.
We all are playing a part on this stage.
कितना बड़ा ड्रामा है.
It is such a big drama.
अभी देवताओं का राज्य तो है नहीं.
Now it is not the rule of deities.
ड्रामा तो है बहुत बड़ा 5000 वर्ष का.
It is certainly a very big drama of 5000 years.
लेकिन इस ड्रामा में इस समय अभी वर्तमान में.
But in this drama, at this time, at present,
2500 वर्ष जो देवताओं ने पार्ट बजाया वो पार्ट अभी नहीं है.
It is not the part that was played by deities for 2500 years now.
कौन सा पार्ट है?
Which part is it now?
मनुष्यों का पार्ट है मनुष्य रूप में.
Human beings have a part in the form of human beings.
और राक्षसी पार्ट है राक्षसों के रूप में.
And the demons have a part in the form of demons.
अभी तो रावण राज्य है.
Now it is certainly the kingdom of Ravan.
अभी.
Now.
यथा राजा तथा सारी प्रजा रावण संप्रदाय है.
As the king, so all the subjects are the ones belonging to Ravan's community.
फिर राम राज्य होता है.
Then there is the kingdom of Ram.
रावण राज्य के बाद है राम राज्य होता है.
देयर इज द किंगडम ऑफ राम आफ्टर द किंगडम ऑफ रावण.
उसको डीटीज्म कहा जाता है.
दैट इज कॉल्ड डीटीज्म. दैट इज द डीटी रिलीजन.
क्या कहा जाता है?
व्हाट इज इट कॉल्ड?
देवताई राज्य.
द डीटी किंगडम.
इसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों आते हैं.
बोथ द सूर्यवंशी दैट इज those who belong to the sun dynasty and the chandravanshi that is those who belong to the moon dynasty are included in it.
Kya kaha?
What was said?
Koi ek vansh nahi hota hai devtaon mein.
There is not just one dynasty among the deities.
Kaun kaun se do vansh hote hain?
Which two dynasties are included?
Suryavanshi bhi hota hai aur chandravanshi bhi hota hai.
there is the sun dynasty as well as the moon dynasty.
Surya bhi hai, to? Hai? Chandrama ka bhi prabhav hai.
There is the influence of the sun as well as the influence of the moon.
Kyun?
Why?
Devatai rajya mein.
In the deity kingdom.
Devataon ke rajya mein.
In the kingdom of the deities.
Sirf surya ka prabhav hota hai.
Is there the influence of only the sun?
Ya chandrama ka bhi prabhav hota hai.
Or is there the influence of the moon as well?
Hai?
Someone said of the sun.
Devatai rajya mein.
In the deity kingdom.
Devataon ke rajya mein sirf surya ka hi prabhav hai.
Is there the influence of only the sun in the kingdom of the deities?
Yeah, chandrama ka bhi prabhav hai.
Or is there the influence of the moon as well?
Hai? Mujhe jaate.
Are you become confused?
Are seedhi seedhi si baat hai, pehle surya ka prabhav hota hai.
Are it is a simple concept. First there is the influence of the sun.
Fir baad mein chandrama ka prabhav ho jata hai.
And then there is the influence of the moon.
Surya bhi devata kaha jata hai, chandrama bhi devata kaha jata hai. Chandra devatai nama, surya devatai nama.
The sun is called a deity as well as the moon is called a deity. It is said chandra devatai namaha, surya devatai namaha. That is, I bow to the deity moon, I bow to the deity sun.
Dono ko devata kaha jata hai.
Both are called deities.
To satyug treta mein dono ka prabhav to hai.
So there is indeed the influence of both in the golden and the silver ages.
Lekin ek ka prabhav pehle aur dusre ka prabhav baad mein aur dwapar kaliyug mein.
But the influence of one comes first and the influence of the other comes later. And in the copper and the iron ages.
है? सूर्य चंद्र का प्रभाव नगण्य के रूप में भी हो जाता है अमावस्या की रात्रि में.
द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन एंड द मून इज नेग्लिजिबल इन द न्यू मून नाइट.
एक पूर्णिमा की रात्रि होती है.
देर इज अ फुल मून नाइट.
उसमें चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है.
द मून इज कम्प्लीटली विजिबल देन.
और सूर्य भी दिन में पूरा दिखाई पड़ता है.
एंड द सन इज ऑल्सो कम्प्लीटली विजिबल इन द डे.
पूर्णिमा को भी दिखाई पड़ता है, अमावस्या को भी दिखाई पड़ता है.
इट इज विजिबल ऑन अ फुल मून डे एज वेल एज ऑन द न्यू मून डे.
ऐसे नहीं कभी प्रभाव हो और कभी प्रभाव न हो.
इट इज नॉट दैट देर इज इट्स इन्फ्लुएंस एट सम टाइम एंड देर इज नो इन्फ्लुएंस एट सम अदर टाइम.
लेकिन द्वापर और कलयुग में सदैव चंद्रमा का प्रभाव हो ऐसा होता नहीं.
बट इट डज नॉट हैपन लाइक दिस दैट देर इज ऑलवेज द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून इन द कॉपर एंड द आयन एजेस.
सूर्य का प्रभाव होता तो है लेकिन रात होती है.
देर इज इंडीड द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन बट वेन द नाइट फॉल्स.
माया अंधेरा फैला देती है.
When Maya spreads darkness,
तो सूर्य का प्रकाश भी खत्म हो जाता है. और सतयुग में है?
The sunlight also ends. And in the golden age,
सतयुग में सूर्य का प्रभाव चाहे सतयुग हो सूर्यवंशियों का और चाहे चंद्रवंशियों का त्रेता हो.
The influence of the sun in the golden age, whether it is the golden age of the Suryavanshi or it is the silver age of the Chandravanshi.
Lekin Surya ka prabhav khatam nahi hota.
The influence of the sun will not end.
Jaise abhi prithvi par north pole hai, south pole hai.
For example, now there is the north pole and the south pole on the earth.
Jab north ki aur Surya uday hota hai.
When the sun rises towards the north, Uttarayan, that is the summer solstice, the sun's northward progress.
तो छह महीने तक नॉर्थ पोल में दिन ही दिन रहता है, रात कभी होती नहीं.
There is only day in the north pole for 6 months. there is no night at all.
ऐसे ही दक्षिणायन जब सूर्य होता है.
Similarly, when the sun progresses southwards, dakshinayan, that is the winter solstice, the sun's movement south of the equator.
तो वहाँ भी रात ही रात होती है 6 महीने तक. वो दिन ही दिन होता है दक्षिणायन जब सूर्य होता है और रात कभी होती नहीं.
There is only day for 6 months. When the sun progresses southward, then night doesn't fall at all.
उलट पलट होता रहता है.
It keeps happening in turns.
तो अगर ये टैली करके देखें तो अंतर क्या हुआ सत्युग त्रेता में और द्वापर कलयुग में.
So if you tally, that is compare this with the following, what is the difference between the golden and silver ages and the copper and iron ages?
देवताओं के राज्य में और असुरों के राज्य में सूर्य चंद्र का क्या असर होता है.
What is the influence of the sun and the moon in the kingdom of the deities and in the kingdom of the demons?
क्या प्रभाव का अंतर पड़ता है.
What is the difference of their influence?
वो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है.
It has sat in the intellect of you children.
दुनिया वाले इन बातों के गहरे अर्थ को नहीं जानती है.
People of the world do not know the deep meaning of these topics.
तो सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है.
So the golden age is called heaven, स्वर्ग.
क्यों कहा जाता है स्वर्ग.
Why is it called heaven?
है स्वर्ग क्यों कहा जाता है.
Why is it called स्वर्ग.
क्योंकि स्वर्ग की स्थिति में रहते हैं.
It is because they remain in the stage of the self.
कभी भी पर माने देह अभिमान में नहीं आते हैं.
They never come in the stage of पर meaning body consciousness.
देह की स्थिति में नहीं रहते हैं.
They do not remain in the stage of the body consciousness.
स्व की स्थिति में रहना.
They live in the stage of the self.
चाहे सत्युग हो और चाहे चंद्रवंशियों के प्रभाव वाला त्रेता हो.
Whether it is the golden age or the silver age with the influence of the Chandravanshi.
फिर भी स्व स्थिति में रहने के कारण स्वर्ग कहा जाता है.
Yet it is called स्वर्ग because they remain in the stage of the self.
और द्वापर कलयुग में.
And what about the copper and the iron ages?
प्रभाव तो दोनों का होता है.
There is certainly the influence of both.
लेकिन सूर्य का प्रभाव आधा आधा दिन और आधा रात.
But there is the influence of the sun for half the time. There is day for half the time and there is the night for half the time.
सूर्य का प्रभाव आधा आधा है.
The influence of the sun is constant for half of the time.
लेकिन चंद्रमा का प्रभाव.
But the influence of the moon
सदैव आधा आधा नहीं होता.
Does not remain constant for half the time.
सिर्फ पूर्णमासी के दिन.
Only on the full moon day
चंद्रमा का प्रभाव रात में होगा.
There will be the influence of the moon at night.
दिन में फिर भी नहीं होगा.
Still there will not be any influence in the day.
तो त्रेता को कहा जाता है सेमी स्वर्ग.
So the silver age is called semi heaven.
हाँ इधर से चंद्रमा निकला 6 बजे शाम सुबह शाम को.
Someone said that too it that is the influence will not be for the whole night. Here the moon rises at 6 o'clock in the evening.
और डूबते समय भी 6 बजे सुबह को डूबा.
And even at the time of setting it sets at 6 o'clock in the morning.
तब तक चंद्रमा का रोशनी रहती है.
The light of the moon prevails till then.
आधा टाइम सिर्फ महीने में एक बार.
For half the time just once in a month.
साल भर में 12 बार.
And 12 times throughout the year.
अगर पुरुषोत्तम मास आ जाए.
If there is a पुरुषोत्तम that is leap month.
तो 13 बार.
Then it is 13 times.
क्या.
What?
उसकी यादगार में ये बना हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग.
It is the memorial of this पुरुषोत्तम संगम युग, that is the elevated confluence age.
इस पुरुषोत्तम संगम युग में
in this elevated confluence age
चंद्रमा का प्रभाव जास्ती रहता है या कम रहता है?
Is there more influence of the moon or is there less?
है द्वापर कलयुग के मुकाबले थोड़ा जास्ती ही रहता है.
When compared to the copper and the iron ages, there is certainly a bit more influence of the moon.
वो सिर्फ एक महीने के लिए.
But just for one month.
तो बोला
So it was said.
त्रेता को कहा जाता है सेमी स्वर्ग.
That the silver age is called semi heaven.
वो सूर्यवंशी और वो चंद्रवंशी.
They are सूर्यवंशी and they are चंद्रवंशी.
कौन?
Who?
है त्रेता में सेमी स्वर्ग क्यों?
Why is it semi heaven in the silver age?
सत्ययुग में फुल स्वर्ग.
There is the complete full heaven in the golden age. Someone said it is short of two celestial degrees.
हाँ वहाँ दो कलाएं पूरी होती है.
Yes, there in the golden age the deities are complete with 16 celestial degrees. Including the two degrees of the beginning.
दो कलाओं भी कम नहीं होती. 16 कला संपूर्ण होता है.
Even the two celestial degrees are not lacking. It is an age complete with 16 celestial degrees.
सेमी स्वर्ग जो कहा जाता है वो त्रेता में कहा जाता है.
The silver age is called semi heaven.
तो त्रेता में सेमी स्वर्ग क्यों कहते हैं?
So why is the silver age called semi heaven?
राम वाली आत्मा
इज द सोल ऑफ राम
क्या सेमी स्वय स्थिति में स्थित होती है? फाइनल पेपर में
कॉन्स्टेंट इन द सेमी सेल्फ स्टेज इन द फाइनल एग्जामिनेशन.
अरे त्रेता में किसका गायन है?
अरे हु इज प्रेज्ड इन द सिल्वर एज?
राम का गायन है. तो राम वाली आत्मा त्रेता में क्या सेमी स्वय स्थिति में स्थिति होती है?
Ram is praised.
So, is the soul of Ram constant in the stage of semi-swasthiti in the silver age?
Semi-roop se atma ki sthiti mein sthit rehti hai.
Is it constant in a semi-soul conscious stage?
Achha, jab final paper hua tha sangam mein, to semi-roop mein final stage mein thi kya?
Achha, when the final examination was held in the confluence age, was it in a semi-form? In the final stage?
हाँ? 16 कला संपूर्ण से ऊंची स्टेज में नहीं जाती?
Does it not go in a higher stage than the stage of being complete with 16 celestial degrees?
जाती है.
It does.
फिर त्रेता को सेमी स्वर्ग क्यों कहा गया?
Then why is the silver age called semi heaven?
चंद्रमा का प्रभाव कहाँ से हो गया? चंद्रमा माने कृष्ण की आत्मा.
How did the influence of the moon begin? The moon means the soul of Krishna.
है? 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 त्रेता में कृष्ण की आत्मा दो कला कम.
The soul of Krishna is short of two celestial degrees in the silver age.
क्यों? कृष्ण को तो 16 कला संपूर्ण गाया जाता है.
Why? Krishna is praised to be complete with 16 celestial degrees.
कृष्ण को कभी कम कला संपूर्ण तो नहीं गाया जाता.
Krishna is never praised to be complete with fewer celestial degrees.
भले उन्होंने द्वापर में डाल दिया तो भी कहते हैं 16 कला संपूर्ण था.
Although they have shown him in the copper age, they say he is complete with 16 celestial degrees.
शास्त्र में तो लिखा हुआ है सत्य को 16 कला संपूर्ण.
It is indeed written in the scriptures that the golden age is complete with 16 celestial degrees.
त्रेता 14 कला संपूर्ण.
द सिल्वर एज इज कम्प्लीट विथ 14 सेलेस्टियल डिग्रीज.
द्वापर 8 कला और कलयुग 4 कला से नीचे गिर करके कलाहीन हो जाता है.
द कॉपर एज विथ 8 सेलेस्टियल डिग्रीज एंड द आयन एज बिकम्स कलाहीन मीनिंग डिवॉइड ऑफ सेलेस्टियल डिग्रीज डिक्रीजिंग फ्रॉम द स्टेज ऑफ बीइंग विथ 4 सेलेस्टियल डिग्रीज.
तो त्रेता में सेमी स्वर्ग है.
So there is semi heaven in the silver age.
तो किसका असर है जो त्रेता में सेमी स्वर्ग आ जाता है?
So under whose influence does semi heaven arrive in the silver age?
चंद्रमा का कहाँ असर है?
Someone said the moon. How is there the influence of the moon?
Gyan Chandrama Brahma.
The moon of knowledge Brahma.
Brahma ki atma Krishna.
The soul of Brahma Krishna.
Krishna ki atma Treta mein raj karti hai kya?
Does the soul of Krishna rule in the silver age? Someone said in the copper age.
Woh to dwapar mein raj karti
hai. It rules in the copper age.
अभी तो बताया द्वापर और कलयुग में तो सूर्य का ही प्रभाव ज्यादा होता है.
Just now it was said there is certainly more influence of the sun itself in the copper age and the iron age.
चंद्रमा का प्रभाव इतना होता ही नहीं है.
There is not much influence of the moon at all.
अगर थोड़ा बहुत चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता भी है.
Even if the influence of the moon increases to some extent,
तो संगम में जाके बढ़ जाता है.
इट इंक्रीजेस इन द कॉन्फ्लुएंस एज.
तो त्रेता में सेमी स्वर्ग किस आधार पर?
सो ऑन व्हाट बेसिस इज इट सेमी हेवन इन द सिल्वर एज?
निमित्त आत्मा कौन है?
विच सोल इज द इंस्ट्रूमेंट?
कोई निमित्त हो, हर चीज का कोई निमित्त होता है या नहीं होता है?
इज देयर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एवरीथिंग और नॉट? समवन सेड द सोल ऑफ राम.
राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा तो सोलह कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज में चली जाती है.
द सोल ऑफ राम, द सोल ऑफ राम अचीव्स अ स्टेज इवन हायर देन बीइंग कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज.
ऊंची स्टेज में न जाए तो सूर्यवंशी क्यों कही जाए?
इफ ही डज नॉट रीच अ हायर स्टेज व्हाई विल ही बी कॉल्ड सूर्यवंशी?
सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या?
इज द सन बाउंड इन सेलेस्टियल डिग्रीज?
सूर्य को कलाओं में तो नहीं बांधा जाता. फिर
द सन इज नॉट बाउंड इन सेलेस्टियल डिग्रीज देन?
है जब सूर्य को कलाओं में बांधा ही नहीं जाता और राम वाली आत्मा सूर्यवंशी कही जाती है.
वेन द सन इज नॉट बाउंड इन सेलेस्टियल डिग्रीज एट ऑल एंड द सोल ऑफ राम इज कॉल्ड सूर्यवंशी.
सूर्यवंशी आत्मा प्रैक्टिकल में भी नारायण के रूप में, संगम भी नारायण के रूप में, नर से नारायण बनती है.
द सूर्यवंशी सोल transforms from a man to Narayan in the form of Narayan, in the form of the confluence age Narayan also in practice.
तो कलाओं से अतीत हो जाती है, परे हो जाती है.
So it goes beyond the celestial degrees.
तब तो देह के आकर्षण के बगैर ही राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं.
It is only then that the children like Radha and Krishna are born without the attraction of the body.
तो कारण क्या है, निमित्त कौन बनता है?
सो व्हाट इज द रीजन हु बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट?
कृष्ण वाली आत्मा तो त्रेता का निमित्त नहीं है.
द सोल ऑफ कृष्णा इज सर्टनली नॉट एन इंस्ट्रूमेंट इन द सिल्वर एज.
समवन सेड द सोल ऑफ लक्ष्मी.
लक्ष्मी वाली आत्मा कैसे?
हाउ इज इट द सोल ऑफ लक्ष्मी? समवन सेड शी इज अ लिटिल लोअर देन नारायण.
न त्रेता से उसका क्या कनेक्शन?
नो, व्हाट इज हर कनेक्शन विद द सिल्वर एज?
थोड़ा थोड़ा पहुंचे बताओ.
समवन सेड समथिंग. यू हैव रीच समवट क्लोजर, स्पीक अप.
वाह भाई, माताओं की जय.
अ मदर सेड शी विल बिकम राम, वोंट शी? यस. वाओ, विक्ट्री टू द मदर्स.
त्रेता में लक्ष्मी बनने वाली जो आत्मा है, जो नारी से लक्ष्मी बनती है.
इन द सिल्वर एज द सोल विच बिकम्स लक्ष्मी विच ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ वुमन टू लक्ष्मी.
वो मूल रूप में कौन से वंश की थी?
बिलोंग टू विच डायनेस्टी ओरिजिनली?
चंद्रवंशियों से आती है.
शी कम्स फ्रॉम द चंद्रवंशी ग्रुप.
वो ही चंद्रवंशियों वाली आत्मा त्रेता में जब पहुंचती है.
When the same soul of the Chandravanshi group reaches the Silver Age,
तो चंद्रवंश का फाउंडेशन लगाने वाली राम बनती है.
She becomes Ram who lays the foundation of the Moon Dynasty.
इसलिए त्रेता में सेमी स्वर्ग है.
This is why it is semi heaven in the Silver Age.
क्या?
What?
त्रेता में फुल स्वर्ग नहीं होता है.
इट इज नॉट फुल हेवन इन द सिल्वर एज.
वहां की निमित्त जो है वो नारायण वाली आत्मा नहीं है.
The soul of Narayan is not the instrument there.
Kaunatma hai?
Which soul is the instrument there?
Hai? Lakshmi wali atma. Lakshmi wali atma Chandravansh se aati hai mool roop mein.
The soul of Lakshmi. And the soul of Lakshmi comes originally from the Moon dynasty.
Vastav mein wo Suryavanshi thi nahi.
Actually, she did not belong to the Sun dynasty.
Jab Sun ka rang liya Narayan ka.
When she came in the color of the company of Narayan,
to kya ban gayi?
What did she become?
Chandravanshi se Suryavanshi ban gayi.
She transformed from Chandravanshi into Suryavanshi.
To Chandravanshi ban jate hain.
So they become Chandravanshi.
Isliye Treta ko semi swarg kaha jata hai.
This is why the Silver Age is called semi-heaven.
Wo Suryavanshi aur wo Chandravanshi?
He is Suryavanshi and she is Chandravanshi.
Jo maya par puri jeet nahi pehen sakte.
The Chandravanshi are those who cannot gain complete victory over maya.
Kaun se jeevan mein?
In which life?
Hain? Purusharthi jeevan mein.
In the Purusharthi life, that is life of making spiritual effort,
apni dam kham ke aadhar par apne pairon khade ho kar ke maya par puri jeet nahi pehen pate.
They, the Chandravanshi, are unable to gain complete victory over maya through their own power, through their own capability, literally standing on their own feet.
Pehen pate?
Is she able to gain victory?
लक्ष्मी की आत्मा अपनी दमखम पर माया से स्वतंत्र हो पाती है.
Is the soul of Lakshmi able to become free from Maya through her own power?
कि माया के पंजे में बंद करके ही रहती. माया माया बेटी ने तो शरीर भी छोड़ दिया अभी.
Or does she remain entangled in the claws of Maya? Daughter Maya has even left her body now.
तो भी किसके बंधन में?
Yet in whose bondage is she? That is Lakshmi.
तो भी जो माया के फॉलोअर्स हैं अभी भी उनके बंधन में
है. स्टिल शी इज इन द बॉन्डेज ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ माया.
तो ये पुरुषार्थ का असर पड़ जाता है जाकर.
सो दिस पुरुषार्थ ब्रिंग्स इट्स इफेक्ट ओवर देयर.
शूटिंग होती रहती है.
द शूटिंग कीप्स टेकिंग प्लेस.
वो चंद्रवंशी बन जाते हैं.
शी बिकम्स चंद्रवंशी.
कौन?
Who?
लक्ष्मी. अच्छा लक्ष्मी चंद्रवंशी बनती है.
लक्ष्मी. अच्छा डज लक्ष्मी अलोन बिकम चंद्रवंशी?
जो रुद्रमाला के मणके हैं.
डोंट द बीड्स ऑफ द रुद्रमाला दैट इज द रोजरी ऑफ रुद्रा
सूर्यवंशी कहे जाते हैं. शिववंशी हैं.
हु आर कॉल्ड सूर्यवंशी हु आर शिववंशी दैट इज बिलोंगिंग टू द डायनेस्टी ऑफ शिव.
वो त्रेता मिला के चंद्रवंशी नहीं बनेंगे?
बिकम चंद्रवंशी इन द सिल्वर एज.
वो क्यों बनेंगे फिर?
समवन सेड दे विल. व्हाई विल दे बिकम चंद्रवंशी देन?
वो तो सूर्य को फॉलो करने वाले.
दे आर द वंस हु फॉलो द सन.
वो चंद्रवंशी क्यों बन जाते हैं त्रेता?
व्हाई डू दे बिकम चंद्रवंशी इन द सिल्वर एज?
राम वाली आत्मा बनती है कि नहीं?
डज द सोल ऑफ राम बिकम चंद्रवंशी और नॉट?
राम वाली आत्मा भी त्रेता में जाकर चंद्रवंशी बन जाती है.
Someone said he does. Even the soul of Ram becomes Chandravanshi in the Silver Age.
ये क्या चक्कर?
What is this confusion?
है? इसलिए चंद्रवंशी बन जाती है कि शिव बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आते हैं.
He becomes Chandravanshi because the father Shiv comes to establish the household path.
क्या?
What?
संन्यास धर्म की स्थापना करने नहीं आते. प्रवृत्ति मार्ग में दो वंश चाहिए.
He does not come to establish the sannyas religion. Two dynasties are required in the path of household.
एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी.
One is the Suryavanshi and the other is the Chandravanshi.
तो दोनों मिलकर के जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे.
So until both of them make purusharth together,
दोनों के मिलकर संस्कार एक न हो जाएं.
Until the संस्कार of both combine and become one,
tat tat chahe rudramala ke man ke ho,
whether they are the beads of the rudramala
aur chahe chandravanshi vijaymala se aane wale man ke ho,
or the beads which come from the chandravanshi vijaymala,
wo vijay prapt nahi kar sakte, to wo bhi adhin ho gaye kiske,
they cannot achieve victory, so they are also subordinates whose,
lakshmi ke adhin ho gaye,
they are subordinates of lakshmi,
isliye chandravanshi ban jate hain,
this is why they become chandravanshi,
to baap samjhate hain,
so the father explains,
kitna samjha karke kitna samjhaun,
how much should I explain to you after explaining so much,
itni gehrai ke point samjhata hu,
I explain to you such deep points,
hai kitna samjhaya hai,
I have explained so much till now,
aur kitna samjhata hu,
and I explain so much at present,
phir bhi buddhi mein se basic walon ki nikalta hi nahi,
yet it does not go away from the intellect of those who follow the basic knowledge at all,
kya ram fail ho gaya,
what ram failed,
ab unki buddhi mein baith gaya hai, bhakti marg walon ki buddhi mein ram fail ho gaya,
well it has sat in their intellect, in the intellect of those who follow the path of bhakti, that ram failed,
to bas buddhi mein baat baith gayi to uske naam se hi ghrana,
that is all, this topic sat in their intellect, so they hate his very name,
koi ram sita banna hi nahi chahta,
nobody wants to become ram and sita at all,
koi chahta,
does anyone want to become ram and sita,
jab haath uthwaye jate hain lakshmi narayan kon kon banenge,
when they are asked to raise their hands for who would like to become lakshmi narayan,
ram sita kon kon banenge,
and who would like to become ram sita,
to koi ram sita banne mein haath uthate hain,
does anyone raise his hand to become ram sita,
nahi uthate,
they do not,
haath uthana chahiye ya nahi chahiye,
should you raise your hand or should you not,
uthana chahiye,
someone said you should, yes you should raise your hand,
to kitna samjha kar kitna samjhave,
so how much should I explain after explaining so much,
pichhari mein fir keh dete hain,
then in the end he says
samajhte samajhte samjhate samjhate aakhir baap bhi thak jate,
while understanding and explaining repeatedly, ultimately even the father becomes tired,
तो पिछाड़ी में आखिर कह देते हैं अच्छा मन मना भव,
सो इन द एंड ही अल्टीमेटली सेज अच्छा मन मना भव,
क्या
वॉट,
तो तुम मेरे मन में समा जाओ,
मर्ज इन माई माइंड,
मेरा मन अमन है,
माई माइंड इज अमन दैट इज थॉटलेस,
बीज रूप स्टेज में है तो तुम भी क्या हो जाओ,
इट इज इन अ सीड फॉर्म स्टेज सो वॉट शुड यू बिकम एज वेल,
अमन हो जाओ बिंदु रूपी स्टेज में, आत्मिक स्टेज में टिक जाओ,
बिकम अमन बिकम कॉन्स्टेंट इन द स्टेज ऑफ द पॉइंट इन द सोल कॉन्शियस स्टेज,
और कुछ मत करो,
डू नॉट डू एनीथिंग एल्स,
ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हो,
इफ यू कैनॉट गो इन टू मच डिटेल,
ज्यादा ज्ञान सागर की गहराई में नहीं जा सकते हो, डर लगता है डूब जाएंगे,
इफ यू कैनॉट गो डीपर इन टू द ओशन ऑफ नॉलेज, if you feel afraid that you will drown,
to kya karo,
then what should you do,
atmik stage mein tik jao, man mana bhav ho jao,
become constant in the soul conscious stage, become man mana bhav,
apan ko atma samajh, baap ko yaad karo,
considering yourself to be a soul, remember the father,
main bhi atma aur mera baap bhi jyoti bindu atma,
I am a soul and my father is also a point of light soul,
to anubhav bhi sunate ho,
so you narrate the experience as well,
kya
what,
kya anubhav sunate ho,
what experience do you narrate,
anubhav sunate ho,
you narrate the experience,
ki baap hi aakar ke humko kaise rakshas se devata banate hain, pehle hum kya the,
how the father himself comes and transforms us from demons to deities, what we were earlier,
aur ab hum kya ban rahe hain,
and what we are becoming now,
aur nikat bhavishya mein hum kya se kya ban jayenge,
and what we will become in the near future.
Yeah?
What?
Sari duniya humko aise karke dekhegi.
The entire world will look at us like this. Baba is looking upwards.
Jaise aasman ke sitaron ko dekhte hain.
Just as they see the stars of the sky.
Unchi stage mein dekhegi ya nichi stage mein dekhegi?
Will it see us in a high stage or in a low stage?
Nichi stage. Dek?
The low stage is like this. Baba is looking downwards with reproach. Hey!
Kaisi stage mein dekhegi?
In which stage will it, that is, the world see us?
Unchi stage mein sar utha ke dekhegi.
It will see us in a high stage. They will see by raising their head above.
Ki hum kaun se sitare hain?
Which stars we are?
Hum aasman ke sitare hain.
We are stars of the sky.
Wo jad sitare nahi.
Not those inert stars.
Hain to dharti ke sitare.
We are indeed stars of the earth.
Lekin chaitanya sitare hain.
And we are living stars.
To baap barobar aakar ke humko manushya se devata banate.
So the father certainly comes and transforms us from human beings to deities.
Devata se manushya aur manushya se phir devata.
Transforming from deities to human beings and from human beings to deities again.
Ye tumhara part hai.
This is your part.
Kya? Kya?
What? What?
Ye mera haath nahi hai. Kis baat mein?
I am not involved in this. In what?
Kis baat mein mera haath nahi hai.
What am I not involved in?
Hain? Main aisa kaam nahi karta hu.
I do not perform such task.
Kaisa kaam?
What kind of task?
Hain? Are? Ki manushya se tumko devata banau fir devata se tumko manushya banau.
Are? To transform you from human beings to deities and then transform you from deities to human beings.
Ye main nahi karta hu.
I don't do this.
Ye kiska part hai?
Whose part is this?
Hain? Ye tumhara part hai. Mera part aisa nahi hai.
This is your part. My part is not like this.
Mere ko dosh nahi dena.
Do not blame me.
Kya? Jai vidura haram tahi vidurahiye.
What? Jai vidhi rakhi ram tahi vidurahiye. That is, we will live the way Ram keeps us.
Achha, satyug treta devata bana ke rakha. Hum devata ban gaye.
Achha, he made us into deities in the golden and the silver ages. So we became deities.
Dwapar kaliyug mein humko asur bana ke rakha. Hum asur ban gaye.
And in the copper and the iron ages, he made us into demons. So we became demons.
Humse asuripana chhutta hi nahi.
We are unable to leave the demonic traits at all.
Aise nahi kehna.
Do not say that.
Main nahi banata hu.
I don't make you into this. That is, deities or demons.
Haath jhaad ke baba to alag ho gaye.
Baba washed his hands of it and got away.
Baba ne apne upar koi bhi ilzam swikar nahi kiya.
Baba did not accept any blame on himself.
Bhakti marg wale aljam lagate na.
The people of the path of bhakti raise allegations, don't they?
Kya?
What? Someone said he makes Ram as well as Ravan.
Sukh bhi bhagwan deta hai satyug mein swarg mein aur dukh bhi bhagwan deta hai.
Yes, it is God who gives us happiness in the golden age in heaven. As well as it is God who gives us sorrow.
Baap kehte na main dukh deta hu aur na main sukh deta hu.
The father says, I neither give sorrow nor do I give happiness.
Main to tumko rasta batata hu.
I show you the path.
Ye sukh ka rasta hai aur ye dukh ka rasta hai.
This is the path of happiness, indicating upwards, and this is the path of sorrow, indicating downwards.
हाँ तुम मेरी मत पर चलेंगे तो कहा जाता है कि भगवान ने मेरे को स्वर्ग में पहुंचाया.
Yes, if you follow my directions, then it is said God enabled me to reach heaven.
तो मैं स्वर्ग में पहुंचाता हूँ, नरक में नहीं ले जाता हूँ किसी को. ये तुम्हारा पार्ट है.
So I enable you to reach heaven. I do not take anyone to hell. This is your part.
अब वो पार्ट तुम अभी बजाए भी रहे हो बीच बीच में.
And you are also playing that part now in between.
बजाए रहे कि नहीं बजाए रहे?
आर यू प्लेइंग इट और नॉट?
एक भी हाँ नहीं कहेगा।
नॉट इवन अ सिंगल पर्सन विल से यस।
छुपाते काहे के लिए?
व्हाई डू यू हाइड इट?
हैं? अरे भरी सभा में कह देना चाहिए।
अरे यू शुड से इट ओपनली इन अ गैदरिंग।
क्या?
व्हाट? समवन सेड दिस इज अ प्ले ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो।
सुख दुख का खेल है, तुम्हारा खेल नहीं है। है? आधा तो ये कहो, ये हमारी आत्मा का ही खेल है।
इट इज अ प्ले ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो, इज इट नॉट योर प्ले? समवन सेड इट इज अ प्ले ऑफ द सोल। यस, सो से दैट इट इज द प्ले ऑफ अवर सोल इटसेल्फ।
हमारी आत्मा ने ही ये सुख और दुख ग्रहण करने का पार्ट बजाया है।
अवर सोल इटसेल्फ हैज प्लेड द पार्ट ऑफ टेकिंग हैप्पीनेस एंड सोरो।
मनुष्य देवता, मनुष्य देवता, फिर देवता से मनुष्य, ये बनना ये तुम्हारा पार्ट है।
चेंजिंग फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू डीटीज एंड देन बिकमिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम डीटीज इज योर पार्ट।
तो ये खेल है।
सो दिस इज अ प्ले।
फिर पिछाड़ी में कह देते हैं, अब हम जाती तुमको क्या बतावे।
देन इन द एंड ही सेज, नाउ व्हाट मोर शुड आई नरेट टू यू?
बाप को याद करो और अपनी राजाई को याद करो।
Remember the father and remember your kingship.
तो राजाई को याद करते करते,
So while remembering the kingship,
बाप को याद करते करते तुम्हारी जो बाप की गति, सो तुम्हारी गति हो जाएगी। ये क्या बाप?
While remembering the father, you will achieve the fate that your father achieves. What is this?
बाप तो परमधाम में जाके बैठ जाएगा हमेशा वानप्रस्थ बन करके 5000 साल के लिए।
The father will become a vanprasthi, that is, beyond speech, and go and sit in the supreme abode forever, for 5000 years.
हम भी ऐसे ही बैठ जाएंगे?
Will we also sit like this?
हाँ? तो क्यों कहा जो बाप की गति से तुम्हारी गति?
Someone said something. Then why was it said that you will achieve the fate your father achieves?
हैं? अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो।
Consider yourself to be a soul and remember the father.
अरे बाप को याद करेंगे तो क्या हाल होगा हमारा?
अरे if we remember the father, what will be our condition?
अंतमते सो गति, तो जो बाप की गति होगी सो हमारी गति हो जाएगी।
Your final thoughts will lead you to your final destination. So we shall achieve the same fate that the father achieves.
तो अच्छी बात है खराब बात है?
So is it a good thing or a bad thing? Someone said, it is something good.
अच्छी बात है कि हम परमधाम में ही पड़े रहे।
Is this a good thing that you keep lying in the supreme abode itself?
लास्ट में आवे जब कीड़े मकोड़े वाली आत्माएं आती हैं।
And come in the last moment when the souls of insects and spiders come?
हैं?
Someone said something.
वो ऊंची स्टेज में नहीं रहेंगे ऊपर?
Will they not remain in a high stage above?
जो कलयुग के अंत में जो आत्माएं उतरती है कीड़े मकोड़े की तरह एक जन्म लेती हैं, खलास हो जाती हैं।
द सोल्स हु डिसेंड फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड इन द एंड ऑफ द आयरन एज हैव वन बर्थ लाइक इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स एंड देन पेरिश।
रात को जन्म लेती, सवेरे को खत्म हो जाती है पतंगे मिसल।
हु आर बॉर्न इन द नाइट एंड पेरिश इन द मॉर्निंग लाइक द मॉथ्स।
तो ऐसी आत्मा बनना है हमको?
डू यू हैव टू बिकम सच सोल्स?
फिर
समवन सेड नो। Then,
अंतमते सुगते नहीं लेना है?
Don't you want to achieve the final destination like the father, as per your final thoughts?
हैं?
अंतमते सुगति लेना है।
अंत में?
अंतमते सुगति सही है। अंत में बाप को याद करने से ऊंची
स्थिति। Someone said, it is true that we reach the fate as per the thoughts we have in the end. We will achieve a high stage by remembering the father in the end, won't we?
ऊंची स्थिति परिणाम में पहुंच जाएगी ना? ऊंची स्थिति में
हाई स्टेज, यू विल रीच अ हाई स्टेज इन द सुप्रीम अबोर्ड, विल यू नॉट?
है? हाँ, जो आखिरी मंत्र है।
समवन सेड, रिमेम्बरिंग द इनकॉर्पोरियल वन विद इन द कॉर्पोरियल वन। यस, द लास्ट मंत्र।
बाप को कैसे याद करना है? अपन को आत्मा समझे, बाप को तो याद करना है।
हाउ शुड वी रिमेम्बर द फादर? We indeed have to remember the Father while considering ourselves to be a soul.
लेकिन हद और बेहद की बात को समझना है.
But we have to understand the limited and the unlimited topics.
बेहद के बाप दो हैं.
There are two unlimited fathers.
एक नहीं है.
There is not just one.
दोनों बेहद के बाप इस समय combined हैं.
Both the unlimited fathers are combined at this time.
जो combined हैं, उसमें याद करना है.
You have to remember him in the combined form.
साकार में निराकार को याद करना है.
You have to remember the incorporeal one within the corporeal one.
तो अंत मते सो गते हो जाए, इसलिए बताया.
Then as your thoughts in the end, so shall be your fate. This is why it was said.
सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना.
That the best purusharth is to remember Narayan. To be continued in VCD 1298.